हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 49, 50 एंड 51। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णाद्वदीय पद पंकज पंजरांतम्, अध्यैव मे विशतु मानसराज हंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्थ, स्मरतव्यः सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वे विद्धि निषेधास्यो, एतयोरेव किंकरः, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तद्धाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं, तत्राद्रहो न परः, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम्, तत्प्रवर्तेन निर्मलम्, ऋषिकेन ऋषिकेश, सेवनं भक्तिरुच्यते, करारविन्दे न पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव, गोविंद दामो धरमाधवेति, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। श्लोक नंबर 49। भगवान के श्री अंग स्वरूप इस जो भगवान के वांगमय अवतार है भागवतम महापुराण उसकी एक एक शब्द के उच्चारण करने से हृदय पवित्र होता है, बुद्धि शांत होती है और मन से मलिनता समाप्त होती है। तो इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं विदुरोपी परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। शब्दात् विदुरोपि यानी विदुर यानी महाराज युधिष्ठिर के चाचा, अपि यानी भी परित्यज त्याग कर प्रभास नाम तीर्थ स्थल में देह आत्मनः अपना शरीर कृष्णावेशेन तच्चित्त कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण आवेशेन यानी उसी विचार में लीन होकर तच्चित्त उसका चित्त यानी विचार तथा कार्य पितृभी यानी पितृलोक के वासियों सहित स्वक्षयम अपने निजी धाम को ययौ चला गया। अब यहाँ पर जैसे हमने कल पांडव के पहले युधिष्ठिर महाराज के जाने के विषय में पढ़ा और उसके बाद अन्य भाइयों के प्रस्थान के विषय में पढ़ा और अब विदुर जी के बारे में बता रहे हैं। अनुवाद देखिए तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया क्योंकि वे भगवान के विचार में लीन रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के वासियों ने किया जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रबंधक देवता हैं और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के हार्दिक मित्र हैं किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि यमराज को मंडूक मुनि ने श्राप दिया था कि वह शूद्र हो जाए, अतः विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने भगवान के नित्य सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्य आत्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतएव वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते थे और इस तरह उनके शूद्र जन्म जीवन के सारे कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के वासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतार धारण करते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों को स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना संभव है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.5 में की गई है। श्री प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि इस अध्याय में समस्त पांडवों के प्रस्थान के विषय में बताया जा रहा है, तो अब जितने भी पांडवों के वृद्ध थे वो सब निकल गए, मतलब कौरव वंश के अब सारे लोग चले गए, धृतराष्ट्र जी चले गए, गांधारी चले गए, युधिष्ठिर महाराज उनके भ्राता श्री चले गए। अब विदुर जी जो कि तीर्थाटन धृतराष्ट्र वालों के साथ गए थे ना, तो धृतराष्ट्र के और गांधारी के तो भस्म होने के बाद भी वो वापस से तीर्थाटन आगे चले गए और वहां पर क्योंकि वो प्रभास में गए थे, पहले हमने पढ़ा था ना कि वो प्रभास में चले गए, तो अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहम आत्मनः। उन्होंने प्रभास में परित्यज्य मतलब अपने शरीर को त्याग किया। शरीर को त्याग किया मतलब वास्तव में विदुर जी ऊपर जा रहे हैं। शरीर तो भौतिक है, देखो यहाँ पर सूत गोस्वामी बताते हैं कि शरीर कुछ समय के लिए हमें प्राप्त करते हैं, शरीर के साथ थोड़े समय के लिए हमारा रिलेशन होता है, हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि यदि हम शरीर होते तो हम जाते ना ऊपर, हम शरीर नहीं हैं। ये तो पांडवों का जो शरीर था वो आध्यात्मिक था, इसलिए उनका शरीर वो शरीर गए हैं, परंतु वास्तव में हमारा जो देह होता है वो प्राकृत होता है। इसलिए विदुर के विषय में कहा विदुरोपि परित्यज, उन्होंने अपने इस देह को परित्यज किया। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें पुनः विदुर जी के विषय में याद करा रहे हैं कि विदुर वही यमराज हैं जिन्होंने मंडूक मुनि को बचपन की अवस्था में एक कीड़े को शूल घुसाने के कारण उनको उन चोरों के साथ प्राणदंड मिला था जो कि उनके यहाँ पर ही छुपे थे। और फिर उस समय मंडूक मुनि ने विदुर जी यानी यमराज जी को यह श्राप दिया था कि आपको क्योंकि न्याय करना नहीं आता, इसलिए आप जाइए पुनः पृथ्वी लोक पर शूद्र बन के जाइए। वास्तव में ये यमराज जी का ही उनके हृदय का भाव था। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि देवता भी भगवान के पार्षद ही होते हैं, लेकिन उन्हें संग प्राप्त नहीं होता। तो यमराज जी सदैव सोचते थे कि मैं तो यहाँ पापियों को सजाएं देता रहता हूँ, भगवान भौतिक जगत में जाते हैं, काश कभी ऐसा हो, कुछ ऐसा करो ना कृष्ण कि मैं भी आऊं भौतिक जगत में और तुम्हारी लीला में सहायता कर मतलब सहायक बनूं, किसी तरह से मैं भी तुम्हारे इस भौतिक जगत में जब तुम लीला कर रहे हो तो उस लीला का आनंद प्राप्त कर सकूं। वास्तव में कोई यमराज को श्राप नहीं दे सकता, आप खुद सोचिए अगर कोई यमराज को श्राप देना शुरू कर दे तो यमराज तो सारा दिन श्रापित ही होते रहे,
किसी का बेटा मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, किसी का क्या, किसी का क्या, तो कितने सारे श्रापों को लेकर यमराज जी कितना समय तक है ना अपना कार्य कर सकते हैं। यमराज जी को श्राप नहीं लगता, परंतु ये उनकी इच्छा थी, इसीलिए भगवान ने उनकी इस पवित्र इच्छा, पवित्र भावना को पूरा करने के लिए यह लीला रची थी, जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज, सॉरी यमराज जी को विदुर जी के स्वरूप में इस भौतिक जगत में आना पड़ा था। और उन्होंने बहुत ही प्रेम के साथ, और उन्होंने भगवान की नित्य सेवक के रूप में अत्यंत ही मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया था, भगवान की सेवा भी, और बहुत ही मनोयोग से उन्होंने कार्य किया था, और बहुत ही पुण्य आत्मा का जीवन बिताया था। भले ही वो कौरवों के साथ रहते थे, परंतु उन्होंने कभी भी कौरवों के किसी भी अपराध में साथ नहीं दिया। तो ये विदुर जी को महात्मा कहा जाता है, महात्मा विदुर। और ये इतने महात्मा थे कि धृतराष्ट्र जैसा क्रूर व्यक्ति भी इनकी संगति से मोक्ष को प्राप्त हुआ। और आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, कृष्णा वेशेन तच्चित्तम, उनके हृदय में सदैव कृष्ण का आवेश था, वो हृदय में केवल कृष्ण का ही विचार करते थे, कृष्ण के विचारों में लीन रहते थे, अतएव पितृ भी स्वक्षयम यय। अब वो जो है वो वापिस से पितृलोक में गए, क्योंकि उनका काम वहीं पर था, वो वहीं से आए थे। और जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक विदुर जी के रूप में इस भौतिक जगत में यमराज जी रहे थे, तो पितरों के जो मुख्य आर्यमान है वो विदुर जी का कार्य संभालते थे। और अब क्योंकि वो भी वेट कर रहे थे कि कभी विदुर जी वापिस आए तो फिर वो अपना काम यमराज जी का संभाले, तो अब उन सब ने उनका स्वागत किया, और वहां पर पितृलोक में सबने स्वागत किया और अपने मूल पद पर उनको बिठाया। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान और भगवान के साथ उनके नित्य पार्षद विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतार धारण करते रहते हैं। अब भगवान सभी पार्षदों को स्मरण रखते हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदनकश। जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है, और भविष्य में घटित होने वाला, वो मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 4.5 में अर्जुन को कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि, बहुत बहुत हो चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं, क्या जन्मानि, जन्म व्यतीत हो चुके, तव चार्जुन, आपके बहुत सारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तान्यहं वेत्थ सर्वत, मैं वो सारे को याद रख सकता हूँ, मुझे वो सब याद है, परंतु न तुम वेत्थ परंतप, आप नहीं जान सकते, आपको याद नहीं है। उसका कारण यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु भगवान की सूक्ष्म अंश होने के कारण उन्हें भूल जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना संभव है, क्योंकि जीव जो है वो भगवान का बिल्कुल सूक्ष्म सा अंश है, तो उसके अंदर क्वालिटीज तो है, परंतु क्वांटिटी जो है वो कम है, बहुत थोड़ा है, तो इसलिए वो अपने पुराने जन्मों को भूल जाते हैं और उन्हें उनका ज्ञान नहीं होता, लेकिन भगवान सब कुछ याद रखते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी के विषय में बताया कि कृष्णा वेशे न चित्त, कि उनका चित्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण के आवेश में ही था, सदैव उनके विचार में था, तो उन्हें अपने वास्तविक लोक में पुनः स्थान मिला और वास्तविक गति प्राप्त हुई। आगे सूत गोस्वामी द्रौपदी के विषय में बता रहे हैं, वे कहते हैं, द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अनपेक्षया, पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवी भगवती एकांतम् मतिरापदम्। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवी भगवती एकांतम् मतिरापदम्। द्रौपदी तत्
जब तदाज्ञाय द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी तद आज्ञाय, आज्ञाय मतलब भगवान श्री कृष्ण को भली भांति जानती थी, वो भगवान के विषय में अवगत थी। वो यहाँ पर एक सिद्धांत बता रहे हैं कि जो पत्नी है, पति जो है उसका कार्य है कि जब तक वो जीवित हो उसे उसको उसके जीवन उसको पत्नी के जीवन के लक्ष्य के विषय में बता देना चाहिए। जैसे शास्त्र कहता है पिता न सस्यात् गुरु न सस्यात् सजनम न सस्यात् पति न सस्यात्, वो पति पति कहलाने के योग्य नहीं है, वो पिता पिता के कहलाने के योग्य नहीं है, वो गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है जो अपने आश्रित को उसके जीवन के लक्ष्य के विषय में ना बताए, जो भगवत भगवान के विषय में ना बताए, जो भगवान के साथ उसको किस तरह से संपर्क करना है, किस तरह से भगवान के साथ अपने प्रेम को पुनः निर्माण करना है। यदि हम वो अपने आश्रितों को नहीं बता रहे हैं तो समझो कि हम वो कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन द्रौपदी के विषय में बताया तद आज्ञाय, द्रौपदी सब जानती थी कि कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है, और यहाँ तक के पति नाम अनपेक्षता, उनके पति सारे चले गए और अनपेक्षता उसकी परवाह नहीं की कि हम चले जाएंगे तो हमारी पत्नी का क्या होगा। जब तक जीवित हैं तब हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, जब तक साथ में है। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बताएंगे कि जब कोई एरोप्लेन में जाता है ना, तो अगर साथ में कोई दूसरा एरोप्लेन भी जा रहा होता है तो आप उसकी सहायता नहीं कर सकते, आपको अपने एरोप्लेन को उड़ाना होता है। आप एक पायलट दूसरे एरोप्लेन की कोई सहायता, उसी तरह से हमें हमारी आत्मा की गति को भगवान तक पहुंचाना है, तो उस समय हम किसी और की चिंता नहीं कर सकते। जब हम मुक्ति के द्वार पर जा रहे होते हैं तब हमें अकेले जाना होता है, कोई अगर जरा सा भी किसी के अंदर आकर्षण हृदय के अंदर रह गया कि उसका क्या होगा, तो फिर समझो आपका एरोप्लेन जो है वो सही गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, वापस उधर आ जाएगा। भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, अगर आपको किसी और का स्मरण भी आ गया ना उस समय, तो तम तमे वैति कौन्ते, फिर मुझे प्राप्त नहीं करोगे। आपको उस समय केवल अपने डेस्टिनेशन प्लेस को देखना है, केवल अपने गंतव्य को देखना है, केवल अपने परम लक्ष्य को देखना है, ये नहीं देखना है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। जब तक जीवित हो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने जितने भी तुम्हारे आश्रित हैं उनको बता दो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और जब अंतिम समय आएगा तब आपको अकेले जाना है, किसी की परवाह नहीं करनी। यहाँ पांडवों ने यह सिद्धांत दिया है, वो कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे पति नाम अनपेक्षता, उन्होंने अपने पत्नी की कोई भी उपेक्षा नहीं की, उन्होंने अपने पत्नी की कोई परवाह नहीं की। लेकिन क्योंकि द्रौपदी सब कुछ जानती थी, वो पहले से ही शिक्षित थी, इसीलिए वासुदेवे भगवती, उन्होंने भगवान वासुदेव के अंदर ही कांतमति, ही कहते निश्चय ही ठीक एकदम परफेक्ट तरीके से, ये नहीं सोचा कि देखो मेरे पति चले गए और मुझे छोड़ के चले गए, ये नहीं, एकांत मति, उन्होंने अपने मति को पूर्णतया वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगा दिया। आज सूत गोस्वामी पांडवों के इन अंतिम सदस्यों के जाने के इस प्रसंग के द्वारा हमें मरने की कला सिखा रहे हैं कि मरने के समय किसी के अंदर मन नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि उसके पति चले गए थे लेकिन उन्होंने वो अपने पति के साथ सती नहीं हुई है, बल्कि वासुदेव भगवती हे कांत मति रापतम, उन्होंने अपनी मति को एक मात्र अपने चित्त को, अपने ध्यान को पूर्णतया वासुदेव के श्री चरणों में स्थित और आपतम, आप कहते हैं प्राप्त किया, तम यानी उसी को जिसके मन जिसके चरणों में अपने मन को लगाया
उन्हीं भगवान को प्राप्त किया, तम यानी उसी को जिसके ऊपर उनका हृदय लगा हुआ था, चित्त लगा हुआ था, एकांत मति लगी हुई थी। भगवान कहते अंतकाले च माम एव, केवल मुझे यदि स्मरण करोगे यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, वो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। अनुवाद, द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गईं और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं कि हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाज की परवाह नहीं करता, हर एक को अपने जहाज की परवाह करनी होती है, और यदि कोई संकट पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को भगवत धाम जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर जब हर एक को भगवत धाम जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं अपनी परवाह करनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व धरातल पर सहायता की जा सकती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भावसागर पार करते समय हर एक को अपनी अपनी परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त आदेशों, उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी अतएव उन्होंने तुरंत भगवान वासुदेव का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति मिली, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गईं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुझाव है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को ही एक सा फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उसका नाम उल्लिखित नहीं है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। श्री प्रभुपाद की जय हो। तो इस प्रकार पांडव परिवार के समस्त सामयिक प्रस्थान हो गया, समस्त सदस्य सिवाय परीक्षित महाराज के, बाकी सारे सदस्य जैसे हमने पढ़ा, पहले कुंती महारानी, फिर सारे पांडव, उसके बाद उनके भाई युधिष्ठिर महाराज, उनके भ्राता श्री विदुर महाराज और द्रौपदी, सुभद्रा, सब उन्होंने सबने अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया, क्योंकि उन सबका चित्त भगवान में लगा हुआ था, वो भगवान के नित्य पार्षद थे। और उनके द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सदैव भगवान का चिंतन करते रहेंगे, भगवान से अपने प्रेम को निर्माण करेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, तो जीवन के अंत में अवश्य हमें भगवत प्राप्ति होगी, जिस तरह से इन सबको हुआ। तो ये कथा आप सबने सुनी। आज सूत गोस्वामी इस कथा का श्रुति फल बताते हुए श्लोक नंबर 51 में बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, यह श्रद्धयेतद् भगवत प्रियाणां पांडव सुतानां इति संप्रयाणं श्रोणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धम्। यः श्रद्धयेतद् भगवत् प्रियाणां पांडव सुतानां मिति संप्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धम्। अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर श्रुति फल बताते हुए कहते हैं, यह श्रद्धयेतद् भगवत प्रयाणम। यह मतलब जो कोई भी, आप सबने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को श्रवण किया। मैं जानती हूँ सदैव मुझसे चूक हो जाती थी, आप लोग फिर भी इंतजार करते थे कि अभी तक श्लोक नहीं आया। बहुत ही प्रेम से आप सब श्रवण करते हो, तो उसके लिए सूत गोस्वामी कहते हैं यह श्रद्धयेतद्। ये जो प्रसंग है उसको जो कोई भी श्रद्धा के साथ, भगवत प्रयाणम, भगवान के अत्यंत ही प्रियजनों, ये पांडव जन जो थे वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, और भगवान वास्तव में अपनी कथा से इतना प्रसन्न नहीं होते हैं जब उनके भक्तों का गायन होता है, भक्तों की कथा होती है, भक्तों के विषय में जब बखान होता है, तो भगवान क्योंकि अपने भक्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रियतम का गुणगान सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, एक प्रियतमा सदैव अपने प्रेमी के विषय में श्रवण करना चाहती है, उसी तरह भगवान भी सदैव अपने भक्तों के विषय में ही श्रवण करना, उनका गुणगान, उनकी महिमा को जब कोई बखान करता है तो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो क्योंकि यह सब पांडव जन भगवान के अत्यंत ही एक कनिष्ठ, हमने देखा कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को देखा, युधिष्ठिर महाराज के त्याग को देखा, अर्जुन के प्रेम को देखा, ये सब कितना अत्यंत प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण से। तो यहाँ सुत गोस्वामी कह रहे हैं यह श्रद्धयेतद् भगवत प्रियाणम। जो कोई भगवान के प्रेमियों की, भगवान के प्रियजनों की कथाओं को प्रेम से सुनता है, और वो कौन है, पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम। वो जो पांडव के पुत्र हैं, पांडव सुतानाम, सुतानाम यानी पुत्रों के, इति यानी इस प्रकार, संप्रयाणम, संप्रयाण प्रयाण कहते हैं भौतिक जगत से जाने को, प्रयाण काले मरने मृत्यु के समय को, लेकिन संप्रयाण यानी मृत्यु के समय अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना। जो साधारण जीव होते हैं उनका प्रयाण होता है, और उस समय भगवान कहते हैं जिस जिस भाव का वो स्मरण करता है वो गति मिलती है, वो संप्रयाण नहीं हुआ। संप्रयाण मतलब जीवन की वास्तविक गति, वास्तविक लक्ष्य अर्थात कृष्ण प्राप्ति। तो क्योंकि इन सब कृष्ण के प्रियजनों ने भगवत प्राप्ति की और हमने उनकी कथा को श्रवण किया, तो उनके लिए यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं श्रोत्यलम स्वस्थ्ययनम पवित्रम। श्रोत्यलम ये जो श्रवण किया ना, ये काली केवल उनके विषय में श्रवण करना। अब देखो वैसे क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कि भाई कथा श्रवण करने का मतलब है कि इसके बाद हमें उसको उसके विषय में करना होता है, वो कार्य करना होता है, लेकिन ये भागवत वह शास्त्र है जिसको केवल श्रवण करने से सद्गति प्राप्त होती है। इसको केवल श्रवण, श्रुत गोस्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया सद्यो हृदय वरुद्यते कृति भी शुश्रूषु तत्क्षण, कि वो केवल यदि श्रवण करने की इच्छा भी करता है ना तो भी उससे उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है, कृष्ण आकर उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी इसी बात को कह रहे हैं श्रोत्यलम, केवल यदि कोई श्रवण करता है, भक्तों श्रवण का बहुत प्रभाव पड़ता है इस शास्त्र को, जो भागवत शास्त्र है ना उसका श्रवण करने से हमें कृष्ण प्राप्ति हो सकती। केवल श्रवण करना है, कितना भगवान ने भगवत प्राप्ति कितना अधिक सरल कर दी है कि जो भगवान के यहाँ पर का श्रोत्यलम खाली श्रवण करना है और कुछ नहीं करना, और उससे क्या होगा स्वस्थ्ययनम पवित्रम। स्वस्थ्ययनम का मतलब होता है कि बहुत ही सौभाग्य होता है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का बहुत बड़ा भाग्यवान, वो व्यक्ति वास्तव में भाग्यवान आज वही है जिसको भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। हम इस संसार में बोलते हैं ना ये कितना भाग्यवान है, इसके पास बहुत धन है, वो समाप्त हो जाएगा। हम बोलते हैं ये कितना भाग्यवान है, इसके पास कितनी सुंदरता है, वो सुंदरता समाप्त हो जाएगी। हम सोचते हैं इसके पास कितना ज्ञान है, वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा, लेकिन भागवत श्रवण करने का जो जो आनंद है, जो फल है वो कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है स्वस्थ्ययनम, बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है, ये पूरी तरह से शुद्ध है, पवित्र है। जितना भगवान के अंदर जितनी पवित्रता है, वह सारी की सारी पवित्रता इस भागवत महापुराण में है। तो जो काली इस प्रसंग को श्रवण करता है, लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धं, लब्ध्वा वो प्राप्त करता है, हरौ भक्तिम, हरौ यानी भगवान श्री कृष्ण की, भक्तिम यानी भक्ति को। इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और यहाँ पर सूत गोस्वामी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं उन समस्त श्रोताओं को जो भगवान के भक्तों की इस कथा को श्रवण करते हैं श्रद्धा के साथ, उनके लिए यह आशीर्वाद है कि यदि आप इस कथा को बहुत ही प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ श्रवण करते हो तो लब्ध्वा हरेर भक्तिम उपैति सिद्धम, तो आपको निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और वही वास्तविक सिद्धि है। जीवन में यदि सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो जीवन बेकार है। लेकिन यदि कुछ भी प्राप्त न कर सके, हमारे भाग्य में हमारे कर्मों के अनुसार कुछ भी भौतिक सुख ना रहा, लेकिन यदि हरि की भक्ति कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई तो यही जीवन की परम सिद्धि है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। अनुवाद, पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य यानी भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि अर्थात भगवत भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने में पूर्ण है, अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना, भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें उत्साह दे रहे हैं कि यदि हम भगवान के भक्तों की और भगवान की कथाओं को प्रेम और श्रद्धा से भक्ति भाव से इसे केवल श्रवण करेंगे तो भागवत का श्रवण करने से मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है। हमारा सौभाग्य है कि परम वैष्णव श्री श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से हम इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। और आप सबकी बहुत बहुत अनुकंपा है कि मुझे जैसे तुच्छ जीव के को यह अवसर प्रदान किया कि मैं भागवत महापुराण को आप तक आप सबको सुना सकूं। कृपया इसी प्रकार मेरा उत्साह बढ़ाइएगा ताकि हम आगे भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें, जीवन की वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर सकें, सर्व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों का सामयिक प्रस्थान शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की जय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।